याद करो कुर्बानी।
मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम यादें साझा करेंगे रामकृष्ण खत्री जी की। लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों को बंद कर दिया गया था। एक दिन तय हुआ कि क्रांतिकारी लोग जेल की बैरक में अपनी अदालत अलग से स्थापित करें, उनकी सुनवाई हो और उस मुकदमे का फैसला सुनाया जाए। 2-3 दिनों तक उन्होंने न्याय का नाटक बड़ी ही सफलतापूर्वक खेला। बाकायदा अभियुक्त लोग कटघरे में खड़े होते थे, सरकारी वकील उन पर आरोप लगाता और सफाई का वकील उन तर्कों को काटता था। न्यायाधीश के स्थान पर बैठाया जाता था रामकृष्ण खत्री को। जिस दिन क्रांतिकारी अदालत ने अपना निर्णय सुनाया, उस दिन सभी के दिलों में ये जानने की उत्सुकता थी कि न्यायाधीश महोदय किसको क्या दंड सुनाते हैं। जज के रूप में रामकृष्ण खत्री ने अपना आसन ग्रहण किया। उन्होंने कागजों को उल्टा पलटा और फिर अपना निर्णय सुनाना प्रारंभ किया। ये निर्णय क्या था, हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति रचना के बाद। श्रोताओं, हमने चर्चा की कि लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने अदालत का एक नाटक खेला और अलग अलग क्रांतिकारियों को सजा सुनाने की बात सोची, और जज के रूप में रामकृष्ण खत्री ने अपना आसन ग्रहण किया और निर्णय सुनाना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने उन लोगों के नाम पढ़े जिन्हें कम सजाएं दी गई थीं, यानी उन्होंने कुछ को 5 वर्ष, कुछ को 10 वर्ष और कुछ को आजन्म कारावास की सजाएं सुनाई। जब उन्होंने अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तो रोशन सिंह अपनी सजा सुनकर चीख पड़े। उन्होंने कहा कि इतनी कम सजा मेरा अपमान है, इतनी कम सजा मेरी ठकुरास के लिए कलंक है। जज महोदय ने धरती पर अपना मुक्का पटकते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर। ये ऑर्डर ऑर्डर सुनकर और न्यायाधीश महोदय को धरती पर मुक्का पटकते हुए देखकर ठाकुर साहब ताव खा गए। वे भी अपना मुक्का तानकर न्यायाधीश की ओर लपके। न्यायाधीश महोदय ने सोचा कि ठाकुर का क्या ठिकाना, कहीं सचमुच न मार बैठे। वे अपने कागज पत्तर उठाकर भाग खड़े हुए। अन्य लोगों ने ठाकुर साहब को रोका और फिर उन्हें शांत किया। हालांकि ये न्याय का नाटक मात्र था, पर उन्हें सचमुच ही इस पर दुख हुआ था और क्रोध आ गया था। क्रोध शांत होने पर अगले ही क्षण उन्होंने रामकृष्ण खत्री जी के गले में हाथ डाल दिया और जो बातें कही वो हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति रचना के बाद। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का। श्रोताओं, 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने न्याय का मुकदमा किया और अलग अलग क्रांतिकारियों को छोटी बड़ी अपने अंदाजे से सजा सुनाई, और जब ठाकुर रोशन सिंह को सजा सुनाई गई तो वो नाराज हो गए कि उनकी सजा इतनी कम क्यों है। लेकिन जब शांत हुए तो अगले ही क्षण उन्होंने रामकृष्ण खत्री के गले में हाथ डाला और कहने लगे, तेरा क्या अनुमान है, क्या सचमुच मुझे 5 वर्ष के कारावास की सजा होगी, इतनी कम? हाँ ठाकुर साहब, नहीं मेरा तो यही अनुमान है। और तेरे इस अनुमान का कारण क्या है? मेरे इस अनुमान का कारण ये है कि एक तो आप ट्रेन लूटने वालों में सम्मिलित नहीं थे और फिर आपके विरुद्ध कोई बहुत गंभीर आरोप भी तो नहीं है। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, पर यार सचमुच ही अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, मुझसे कम उम्र के लड़कों की लंबी सजाएं हों, उम्र कैद हो, फांसियां लगें और मुझे 5 साल की सजा, ये सचमुच मेरा अपमान होगा। ठाकुर साहब, सजाएं उम्र के आधार पर नहीं जुर्म के आधार पर दी जाती हैं। रामकृष्ण खत्री जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। चलो खैर देखा जाएगा, पर तू आज मेरे हाथ आया नहीं, ये अच्छा ही हुआ। हाँ सचमुच अच्छा ही हुआ, मुझे तो आप बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और अगर सचमुच मैं पकड़ जाता तो कुछ तो मुश्किल में पड़ता। और दोनों हंस पड़े। ऐसे दीवाने थे वो क्रांतिकारी जो कम सजा की बात सोच कर भी दुखी हो जाते थे।
वीरान इस चमन में, वीरान इस चमन में कोई गुल खिलाते जाना,
वीरान इस चमन में कोई गुल खिलाते जाना,
खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहाते जाना, दिन खून का हमारे खाके सोए जलियां बाग में हम, गोली को खाके सोए जलियां बाग में हम,
जलियां बाग में हम
सुनी पड़ी कब्र पर, سونی پڑی قبر پر دیا جلاتے جانا
سونی پڑی قبر پر دیا جلاتے جانا
خوشیوں میں اپنی ہم پر آنسو بہاتے جانا
دن خون کا ہمارے
بہتے ہمارے رنگ میں بہتے ہمارے رنگ میں دامن بھگوتے جانا بہتے ہمارے رنگ میں دامن بھگوتے جانا خوشیوں میں اپنی ہم پر آنسو بہاتے جانا
دن خون کا ہمارے
کچھ قید میں پڑے ہیں اور ہم قبر میں پڑے قید میں پڑے ہیں اور ہم قبر میں پڑے ہیں
ہم قبر میں پڑے ہیں
اس کارکرم میں آج ہم بات کر رہے ہیں رام کرشن کھتری جی کی ہم نے بات کی کہ نیایالے کا ایک ناٹک کھیلا گیا اور وہاں کرانتیکاریوں نے ایک دوسرے کو سزا سنائی ایک اندازہ لگایا کرانتیکاریوں کے بیچ اس طرح کے منوونود اکثر ہوا کرتے تھے رام کرشن کھتری بھی کاکوری کیس کے ایک ابھیوکت تھے یدی بھی وہ بھی کاکوری ٹرین ڈکیتی میں سملت نہیں تھے پر وہ اپنے دل کے ساتھ انی ابھیانوں میں سملت ہو چکے تھے وہ کرانتیکاری دل میں کس پرکار سملت ہوئے یہ کہانی بھی بہت روچک ہے رام کرشن کھتری مہاراشٹر کے چاندا ضلع کے انترگت چکھلی گاؤں کے رہنے والے تھے اپنے ودیارتھی کال میں وہ اگر وچاروں کے تھے اور ڈاکٹر منجے اور بال گنگا دھر تلک سے بہت پربھاوت تھے پرستھتیوں کے کارن انہوں نے اپنی یواوستھا میں ہی سنیاس لے لیا اور اداسی سادھو سمپردائے کے سچیو بن گئے اب وہ سوامی گووند پرکاش کے نام سے سادھنا کر رہے تھے سنیوگ ایسا ہوا کہ ایک بار سوامی گووند پرکاش کی بھینٹ چندر شیکھر آزاد سے ہو گئی چندر شیکھر آزاد بھی ان دنوں ایک سادھو کے ویش میں رہ رہے تھے ایک آشرم کا مہنت مرنے والا تھا مرنے کے پہلے وہ کسی برامن ونش کے بالک کو گود لے لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے بعد آشرم اور اس کی سمپتی کا وہ اترادھیکاری بن سکے کرانتیکاریوں نے سوچا کہ کسی کرانتیکاری کو اس سادھو کا ششیہ بنا دیا جائے جس سے سادھو کی مرتیو کے اپرانت اس کی جائیداد کرانتیکاریوں کے ہاتھ لگ جائے اور کرانتی کی گتیویدھیاں چلانے میں سویدھا ہو سب نے نشچے کر کے چندر شیکھر آزاد کو اس کا ششیہ بنا دیا آزاد نے سوچا کہ گرو جی تو مرنے ہی والے ہیں اس لیے ان کی اچھی سیوا کر لی جائے آزاد کی سیوا سے وہ سادھو سوستھ ہونے لگا آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس دیش بھکتی گیت کے بعد
साहस से आया कपि सेना का सहारा है बने खर दूषण तिमिर को प्रखर अकेले अनेक दानवी बेदारा है। हरी याद राम के नाम लीला भूले नहीं, सब दे उन्होंने बांधी
श्रोताओं। स्वामी गोविंद प्रकाश से आजाद का पूर्व परिचय था। दोनों एक दिन साधु वेश में मिले। उन्होंने एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाए। आजाद ने बताया कि हमारे महंत जी तो मरने के बजाय अब और तगड़े हो गए हैं। जिस लालच में मैं उनका शिष्य बना था वो उद्देश्य तो अब दूर होता जा रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर भागने वाला हूँ। स्वामी गोविंद प्रकाश ने बताया कि अपनी स्थिति से संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से उतरकर देख लिया है कि केवल कुछ पहुंचे हुए साधुओं को छोड़कर शेष स्वार्थी और चरित्रहीन ही हैं, तथा उनसे मेरी निभती नहीं है। आजाद ने गोविंद प्रकाश जी को फुसलाया, कहां इस उम्र में सन्यासी बनने चले हो, सारी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच कैसे निकालोगे। अच्छा है कि इन लोगों द्वारा पतित किए जाने के पहले क्रांतिकारी दल में आ जाओ और बंदिनी भारत माता की कुछ सेवा कर लो। बात स्वामी गोविंद प्रकाश की समझ में आ गई। वे आजाद के कहने से क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। आजाद तो पहले से ही क्रांतिकारी थे। दोनों ने अपने अपने रंगे हुए कपड़े उतार फेंके और सुमरनी के स्थान पर रिवॉल्वर अपना लिया। अब वे स्वामी गोविंद प्रकाश नहीं क्रांतिकारी दल के रामकृष्ण खत्री थे। श्रोताओं, याद करो कुर्बानी इस कार्यक्रम में आज हम आपसे यादें साझा कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं राष्ट्र वंदना के ये स्वर।
मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर, मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर। हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं। मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं।
जिंदगी आजादगी आजादगी
आजादगी, जिंदगी आजादगी, आजादगी है जिंदगी। मौत बेहतर है अगर आजादी ये कामिल नहीं, मौत बेहतर है अगर आजादी ये कामिल नहीं। मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं। कर गया चट तेरी मेहनत का समर सरमायादार, कर गया चट तेरी मेहनत का समर सरमायादार, तुझको फाके के सिवा मजदूर कुछ हासिल नहीं, तुझको फाके के सिवा मजदूर कुछ हासिल नहीं। मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं। कान खोदे और जमीन छोड़ते किसानों पेशावर, कान खोदे और जमीन छोड़ते किसानों पेशावर, आह हंगामे तमत्तो कुछ इन्हें हासिल नहीं, आह हंगामे तमत्तो कुछ इन्हें हासिल नहीं। मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं। जाग ए मंसूर देखो वो निदाने लगी, जाग ए मंसूर देखो वो निदाने लगी, कौम की दौलत है दौलत दौलत काहिल नहीं, कौम की दौलत है दौलत दौलत काहिल नहीं। मांगा पहले अब न मांगेंगे मगर लेंगे जरूर, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल नहीं, हक के आजादी के हम हकदार हैं साइल।
रामकृष्ण खत्री के पास यौवन था, बलिष्ठ देह थी, सूझबूझ थी और दल के प्रति निष्ठा थी। वे क्रांतिकारी दल की सभी योजनाओं और अभियानों में सम्मिलित होने लगे। उन्हीं दिनों 9 अगस्त सन 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर गाड़ी रोककर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना लूट लिया। इस ट्रेन डकैती के फलस्वरूप जो व्यापक धर पकड़ हुई उसके अंतर्गत बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गए जो ट्रेन डकैती में सम्मिलित नहीं थे। रामकृष्ण खत्री भी इसी प्रकार गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हें सभी क्रांतिकारियों के साथ लखनऊ जेल भेज दिया गया। जेल अधिकारियों के साथ प्रारंभिक झगड़ों और अनशनों के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों को जेल में कुछ सुविधाएं मिली। वे एक साथ मिल सकते थे, गपशप कर सकते थे और खेल कूद में भाग भी ले सकते थे। और इसी मनोविनोद के तहत उन्होंने मुकदमे का नाटक किया था और रामकृष्ण खत्री जी ने जज के रूप में कुछ फैसले सुनाए। विचित्र बात ये है कि रामकृष्ण खत्री द्वारा सुनाया गया फैसला हैमिल्टन द्वारा सुनाए गए फैसले से बहुत अधिक मिलता हुआ था। जो दंड उन्होंने स्वयं के लिए सुनाया था वो बिल्कुल ठीक निकला। 6 अप्रैल सन 1927 को लखनऊ की अदालत ने काकोरी केस का निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। क्रांतिकारियों का न्यायाधीश सीखचों के अंदर बंद कर दिया गया। नमन ऐसी महान क्रांतिकारी को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इसमें आज हमने चर्चा की रामकृष्ण खत्री जी की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। किसी नए क्रांतिकारी की जीवनी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
याद करो कुर्बानी।